नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशल जल प्रबंधन के लिए देश का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बना। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन सप्ताह के अवसर पर आज नई दिल्ली में दिव्यांग बच्चों के लिए कला और शिल्प कार्यशाला आयोजित की गई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बन गया है। ये दर्जा वर्षा जल संचयन और भंडारण, शून्य तरल निर्वहन और अपशिष्ट जल पुनः उपयोग, जल कुशल अवसंरचना और व्यापक जल प्रबंधन ढांचे के उच्चतम मापन पैमाने को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। हाल ही में हुए जल नवाचार सम्मेलन 2025 में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को इस उपलब्धि के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा कि वाटर पॉजिटिव बनना संसाधन के जिम्मेदार इस्तेमाल, पर्यावरण प्रबंधन और विमानन अवसंरचना के भविष्य के लिए जिम्मेदारी को दिखाता है। श्री जयपुरियार ने कहा कि ये उपलब्धि हवाई अड्डे की नेट जीरो एयरपोर्ट के तौर पर मजबूत स्थान स्थापित करने के दूरगामी दृष्टि की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रीय राजधानी के सुंदर नर्सरी में आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल में देश भर के 25 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की लगभग 300 लखपति दीदियां मेले में भाग ले रही हैं। मेले में खाने के कुल 62 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें से 50 में ताजा भोजन परोसा जा रहा है और 12 स्टॉलों में प्राकृतिक खाद्य उत्पादन उपलब्ध हैं। मेले में हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात भाग ले रहे हैं। मेले में दिल्ली और आसपास के शहरों से आए लोग 500 से ज्यादा व्यंजनों का लुत्फ ले सकेंगे। मेला आम जनता के लिए इस महीने की 9 तारीख तक सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत न केवल आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रगति कर रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि फुटवेयर उद्योग वित्त वर्ष 2024-25 में 22 अरब 34 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात के साथ अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
फुटवेयर प्रोडक्शन और कंजप्शन में संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का फुटवेयर एक्सपोर्ट 2500 मिलियन यूएस डॉलर से कुछ अधिक था। हमारे फुटवेयर इंपोर्ट्स लगभग 680 मिलियन डॉलर के थे।
राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए फुटवेयर व्यवसाय के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे सभी विद्यार्थियों के लिए स्व उद्यमी बनने और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि पारंपरिक चमड़े के जूतों के क्षेत्र में भारत का प्रमुख स्थान है। उन्होंने खेल और गैर चमड़े के जूतों के क्षेत्र में प्रगति की अपार संभावनाओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान के 40 वर्ष पूरे होने पर सराहना की। उन्होंने स्नातकों को बधाई दी और कहा कि कुशल युवा विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 94 में बने जंगल ट्रेल पार्क का नोएडा विधानसभा के विधायक पंकज सिंह ने आज लोकार्पण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 18.27 एकड़ क्षेत्र में बनी यह परियोजना लगभग 400 टन स्क्रैप सामग्री का सदुपयोग करते हुए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यह पार्क विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी आर्टिफिशियल जू है जो पूरी तरह से अपशिष्ट सामग्री से बनाया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पार्क प्रकृति, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण और रचनात्मक उपयोग के बारे में सिखाता है। दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आज राष्ट्रीय राजधानी के विजय नगर क्षेत्र के एफ, जी और एच ब्लॉक में निरीक्षण कर स्वच्छता और नागरिक सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान महापौर ने निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत तथा प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और जवाबदेह नगर सेवाएं सुनिश्चित करना निगम की निरंतर प्राथमिकता है। देश भर में आज गीता जयंती मनाई जा रही है। ये दिन उस पल की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष से भी पहले कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता का कालजयी उपदेश दिया था। गीता जयंती भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए सार्वभौमिक ज्ञान की याद दिलाती है जो लाखों लोगों को उनके आध्यात्मिक और दैनिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्य पालन के संदेशों से सुशोभित इस ग्रंथ का भारतीय पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत विशिष्ट स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि इसके दिव्य श्लोक हर पीढ़ी को निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मानव जीवन को धर्म, कर्तव्य और सत्य के आलोक से भर देने वाली श्रीमद् भगवद गीता सदियों से मनुष्य के अंतर्मन को दिशा देने वाला दिव्य उपदेश है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का ये अमूल्य उपहार संपूर्ण सृष्टि को साहस, विवेक और समत्व का मार्ग प्रदान करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज जैव सुरक्षा को मजबूत करने और जैविक हथियार सम्मेलन को मजबूत बनाने के लिए तत्काल वैश्विक सुधारों का आह्वान किया। डॉ. जयशंकर ने ये बात नई दिल्ली में जैविक हथियार सम्मेलन के 50 वर्ष विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करना विषय पर आयोजित सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रगति तेजी से मौजूदा वैश्विक शासन ढांचों से आगे निकल रही है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए जोखिम पैदा हो रहे हैं।
बायोटेररिज्म इज अ सीरियस कंसर्न।
यह स्पष्ट है कि जैविक खतरा प्राकृतिक है, आकस्मिक है। यह तेजी से बढ़ता है, यह सीमाओं को चुनौती देता है और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और कर भी चुका है। मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली ही मजबूत सुरक्षा प्रणाली है। कोई भी देश अकेले ऐसे खतरों का सामना नहीं कर सकता है। इसका कोई एक समाधान नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही सबसे कारगर उपाय है।
इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मेलन अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश में जीवन विज्ञान में नवाचार और दुरुपयोग के बीच एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक बैंक का सहायक शाखा प्रबंधक भी शामिल है। दक्षिणी पश्चिमी जिला के अपर पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि आरोपी आम लोगों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर उनके साथ ठगी किया करते थे। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और ठगी से हासिल किए 50,000 रुपए जब्त किए हैं।
थाने में हमने रिलेवेंट सेक्शंस जो भारतीय न्याय संहिता के हैं उसमें FIR दर्ज करी है और इसमें 3 लोगों को अरेस्टिंग हुई। रिकवरी में हमारे पास 6 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 50,000 रुपए जो इसमें कंप्लेनेंट के थे, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, उसकी रिकवरी हुई।
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग सप्ताह के अवसर पर आज नई दिल्ली में दिव्यांग बच्चों के लिए कला और शिल्प कार्यशाला का 4th संस्करण आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम स्पेशल ओलंपिक्स भारत और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के सहयोग से हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सृजन नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग कलाकारों को रचनात्मक अभिव्यक्ति, कौशल विकास और विभिन्न कला रूपों का प्रशिक्षण प्रदान करना था।
हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकारों और कल्याण के लिए समर्थन जुटाना है। इस कार्यशाला में दिव्यांग बच्चों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रतिभागियों की कला व प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि सृजन जैसे कार्यक्रम एक समावेशी और सशक्त समाज के निर्माण में सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करते हैं।
बच्चों के लिए जो अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करते हैं, उनके जीवन शैली में सुधार हो, वो बेहतर कर सके, मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं वो लोग अच्छे कर सके, उनके लिए निरंतर ऐसा काम होते रहे, पुनित काम, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है।
इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने कहा कि इस कार्यक्रम में आए दिव्यांग कलाकार दृढ़ता, कल्पनाशीलता और उत्कृष्टता के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह एक कार्यशाला नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जो हर व्यक्ति को उनकी क्षमताओं के लिए सम्मानित और प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अतिरिक्त NGMA के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम ने बताया कि दिव्यांग जनों को कला संस्कृति से जोड़ना और आने वाले समाज के साथ मुख्य धारा में उनको लाना संस्थान के लिए गर्व का विषय है। सृजन कार्यक्रम में कुछ दिव्यांग बच्चों का चयन कर उन्हें लगभग 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमन यादव के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर HIV और एड्स के बारे में बेहतर समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इसके प्रसार को रोकने के लिए इसके उपायों और शीघ्र जांच के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये दिन HIV से संक्रमित और प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और इसके फैलने से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। दिल्ली में आज दिन में मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशल जल प्रबंधन के लिए देश का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बना। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन सप्ताह के अवसर पर आज नई दिल्ली में दिव्यांग बच्चों के लिए कला और शिल्प कार्यशाला आयोजित की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।